का था, रूह वही रूप नया।
कत्ल का राज के पिछले भाग में आपने सुना कि मंगतानी का कत्ल हो गया। उसके कत्ल में चौधरी, कांता और सम्यक तीन लोग शक के दायरे में थे, जिसमें से सम्यक ने पुलिस स्टेशन आकर खुद अपना इकबाले जुर्म कर लिया। क्या वाकई सम्यक ने ही मंगतानी का कत्ल किया है, या फिर इस कत्ल के पीछे और भी कोई राज है? जानने के लिए सुनिए कत्ल का राज का ये भाग गाथा पर। ज्योति शुक्ला ने सुबह सुबह टीवी ऑन किया और खबरें देखने लगी। पठानकोट में पाकिस्तानी आतंकियों ने हमला कर दिया था और कल से ही भारतीय सेना उनसे लोहा ले रही थी। अचानक सम्यक बाबलानी की खबर चलने लगी। मंगतानी मर्डर केस में जांच अधिकारी अमर सिंह ने टीवी पर आकर केस हल होने की सूचना दी और संवाददाता से इस विषय पर बात करने लगे। ज्योति सम्यक से पूर्व परिचित थी। सम्यक और वो मलाड के डालमिया कॉलेज में कई वर्ष साथ पढ़े थे। उनका दोस्तों का एक छोटा सा ग्रुप कॉलेज में खूब मशहूर भी था। बाद में ज्योति वकील बन गई और विख्यात वकील नानावटी की असिस्टेंट बनकर काफी कुछ सीख गई और अब वो स्वतंत्र प्रैक्टिस करती थी। अभी कुछ समय पहले ज्योति जब घर ढूंढ रही थी, तब उसकी मुलाकात एक बार फिर सम्यक बाबलानी से हुई थी, जिसने खूब दौड़ धूप करके उसे मनचाहा मकान दिलवाया था और दोस्ती के नाम पर कमीशन लेने से मना कर दिया था। उसकी कल्पना ज्योति एक कातिल के रूप में कर ही नहीं पा रही थी। उसने पूरी दिलचस्पी से अमर सिंह का बयान सुना और मन ही मन सम्यक की ओर से केस लड़ने का फैसला कर लिया। कोर्ट के लिए वो नियत समय से काफी पहले निकल गई और पुलिस स्टेशन पहुंची। पुलिस स्टेशन में अमर सिंह ने उसका स्वागत किया। पिछले कुछ समय में ज्योति कई बार अलग अलग सिलसिलों में अमर सिंह से मिली थी और कई मामलों में कोर्ट में दोनों एक दूसरे से टकराए भी थे, पर दोनों एक दूसरे की काबिलियत की इज्जत करते थे। आइए वकील साहिबा, आज यहाँ कैसे भूल पड़ी, अमर सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। ज्योति भी मुस्कुराने लगी और फिर बोली, सम्यक बाबलानी की ओर से वकील बनने का इरादा खींच लाया है इंस्पेक्टर साहब। अरे 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 अरे, ऐसा गजब मत कीजिए ज्योति जी, उसके खिलाफ ओपन एंड शट केस है। ऊपर से खुद उसने आकर एक बालिया बयान दिया है, क्यों आप अपनी मिट्टी पलीद करवाना चाहती हैं खुद? जानती हूं अमर सर, लेकिन वो मेरा कॉलेज फ्रेंड रह चुका है और अच्छा आदमी है। बेचारा किन्हीं कारणों से शराब की लत में फंस गया है और उसकी माली हालत ऐसी नहीं है कि बड़ा वकील कर सके। बस इसलिए मैं दोस्ती का फर्ज निभाना चाहती हूँ। अब जो होना है वो होगा ही, पर कोशिश करना तो अपना काम है ना, ज्योति उदास सी होकर बोली। ओके, जैसी आपकी मर्जी ज्योति जी, अमर सिंह मुस्कुराता हुआ बोला। अगर आप खुद आ बैल मुझे मार वाले मूड में हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ। आप बाबलानी को कोर्ट में कब पेश कर रहे हैं सर, ज्योति ने पूछा। अभी 11 बजे की पेशी है। ओके, क्या मैं सम्यक से मिल सकती हूँ? मैं वकालतनामा लाई हूँ, उस पर उसके साइन भी ले लूँगी, ज्योति ने पूछा। अमर सिंह ने अनुमति दे दी। उसके विचार से ज्योति की पराजय निश्चित थी। अमर सिंह के आदेश से सम्यक को लाकर एक कमरे में ज्योति से मिलवाया गया। ज्योति उसका केस लड़ेगी ये जानकर सम्यक के आंसू छलक आए। ज्योति ने सम्यक के कंधे पर हाथ रखकर उसे ढांढस बंधाया और बोली, वक्ती तौर पर क्रोध के हवाले होकर तुम्हारे हाथों अपराध हुआ है सम्यक, तुमने कोई कोल्ड ब्लडेड मर्डर नहीं किया है, मैं भरसक तुम्हारा बचाव करूंगी। फिर सम्यक से बड़ी बारीकी से पूछताछ करके वकालतनामे पर उसके हस्ताक्षर लेकर ज्योति वहां से निकल पड़ी। जाते जाते एक बार फिर सम्यक के कंधे पर हाथ रखकर बोली, कोर्ट में मिलते हैं। कोर्ट नंबर 3 के जज गायतोंडे काफी सख्त समझे जाते थे। सम्यक बाबलानी को जब कटघरे में पेश किया गया तो उस शराबी को देखते ही उन्होंने वित्रिष्णा से होंठ टेढ़े कर लिए। उनकी नजर में ऐसे लोग समाज के कोढ़ थे, जो अपने स्वार्थों के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। केवल 5 मिनट की बहस के बाद ये सुनकर कि मुजरिम ने खुद थाने में आकर अपना अपराध कबूल किया है, जज साहब की दृष्टि थोड़ी बदली। पर उन्होंने 10 दिन का रिमांड दे दिया। ज्योति ने भी पोस्टमार्टम और दूसरे सबूतों की कॉपियां ली और निकल गई। अब इन्हीं में से उसे सम्यक के बचाव का रास्ता ढूंढना था। दूसरे दिन ज्योति कांता के घर चारकोप पहुंची। ये मुंबई के उपनगर कांदिवली में बसी विशाल बस्ती है। वो बेचारी अभी सदमे से उबर नहीं पाई थी। एक तो उसके मालिक का कत्ल हो गया और साथ ही उसकी नौकरी भी छूट गई थी, क्योंकि मंगतानी की मौत के साथ ही उसका ऑफिस बंद हो चुका था। ज्योति ने कांता को थोड़ी सांत्वना दी, फिर उसके थोड़ा संयत होने पर पूछताछ आरंभ की। मंगतानी साहब कैसे आदमी थे, उसने पूछा। कांता ने नजर उठाकर ज्योति की ओर देखा, मानो प्रश्न ही ना समझ पाई हो। अब मेरा मतलब है, एक औरत की नजर से बताओ कि ऑल टोटल मंगतानी कैसा आदमी था, ज्योति ने अपनी बात स्पष्ट की। कांता ओढ़नी के कोने से आंखें पोंछती हुई बोली, अब एकदम फरिश्ते तो नहीं थे, लेकिन ऐसे बुरे नहीं थे कि साथ रहना असंभव हो। अगर ऐसा होता तो मैं 4 साल वहां कैसे टिकती। रुपए पैसे के मामले में उनका बर्ताव कैसा था? अब आजकल कौन है जो रुपए के पीछे पागल ना हो, लेकिन मेरी तनख्वाह हमेशा समय से ही देते थे, बाकी मैं नहीं जानती, कांता फिर रोने लगी। कुछ देर इंतजार करने के बाद, कत्ल के दिन क्या क्या हुआ था मुझे बताओगी तो मंगतानी साहब के कातिल को सजा मिलने में आसानी होगी, ये कहकर ज्योति ने कांता के कमजोर पहलू पर दबाव बनाया। जवाब में कांता ने उस दिन की और उसके आगे की सारी घटनाएं बयान कर दी। उसकी बात पूरी हुई ही थी कि एक डिलीवरी बॉय कुछ सामान लेकर आ गया। ज्योति ने देखा तो वो एक सैमसंग का गैलेक्सी नोट मोबाइल था। एक ऐसी औरत जिसकी अभी नौकरी छूटी हो, उसे ऐसा महंगा मोबाइल मंगवाते देख उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, जिसे कांता ने भांप लिया और जल्दी से बोली, वो पहले ही बुक करवाया था, अब तो लेना ही पड़ेगा ना। फिर उसने ज्योति को चाय के लिए पूछा तो उसने मना कर दिया और कांता को धन्यवाद करके निकल गई। कांदीवली से अपनी एक्टिवा स्कूटी पर ज्योति मंगतानी की बीवी गायत्री के घर गोरेगांव पहुंची। गोरेगांव के मोतीलाल नगर में मंगतानी ने महाडा के द्वारा बनाया गया एक रो हाउस बंगला खरीद रखा था। उसके कोई बाल बच्चा तो था नहीं, बस मियां बीवी रहते थे। गायत्री शोक की प्रतिमूर्ति बनी बैठी थी। एक दो रिश्तेदार भी गम में ढांढस बंधाने के लिए आए हुए थे। ऐसी अवस्था में कोई ज्यादा बातचीत होनी तो मुश्किल थी। ज्योति संवेदना प्रकट करके लौट आई, उसे कोर्ट जाना था। रात को ज्योति ने मंगतानी मर्डर केस की फाइल निकाली और पुलिस द्वारा जुटाए गए सभी सबूतों पर गंभीरता से विचार करने लगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का गहराई से अध्ययन करने पर एक जगह उसके माथे पर बल पड़ गए और उसकी आंखें चमक उठी। सबूतों में भी उसे पुलिसिया लापरवाही के कुछ लूप होल मिले, जिन पर बहस करके वो केस को संदेहास्पद बना सकती थी। सम्यक ने अपने बयान में बताया था कि मंगतानी उसे रात को 1,00,000 रुपया कैश ऑफर कर रहा था, तो वो रुपया अब कहां था? अगर सम्यक के पास नहीं मिला तो उसे कौन ले गया? अगर इस बात पर जोर डालकर ज्योति जज के मन में संदेह का अंकुर उगा सकती तो सम्यक को लाभ हो सकता था। उसने संतुष्टिपूर्ण ढंग से सिर हिलाया, उसे लाइन ऑफ एक्शन मिल गया था। अगले दिन ज्योति सम्यक की पत्नी आशा के घर गई। उसका घर कांदिवली पूर्व की दामू नगर नामक विशाल झोपड़पट्टी एरिया के बीच एक खस्ता हालत इमारत में पहली मंजिल पर था। दरवाजा एक 10-12 साल की लड़की ने खोला, जिसका चेहरा हूबहू सम्यक जैसा था। ज्योति समझ गई कि यही सम्यक की बेटी ईशा है। ज्योति ने अपना परिचय देते हुए उसकी मम्मी से मिलने की इच्छा जताई तो ईशा ने ज्योति को सोफे पर बैठने को कहा और भीतर चली गई। फिर तुरंत ही लौटी तो तौलिए से हाथ पोंछती हुई आशा उसके पीछे पीछे आ गई। जरा कपड़े धो रही थी, आशा ने कहा। वो दोहरे बदन की स्त्री थी जो किसी जमाने में खूब सुंदर रही होगी, ऐसा ज्योति ने सोचा, पर अब चर्बी उसके बदन पर कब्जा कर चुकी थी। ऊपर से दुखी पारिवारिक जीवन का क्लेश उसकी आंखों के गिर्द काले घेरे के रूप में अड्डा बना चुका था। ज्योति ने बताया कि वो उसके पति को बचाने की कोशिश कर रही है, इसी संबंध में कुछ बातें करने आई है। तो आशा बोली, आपको किसने अपॉइंट किया है मैडम, मेरे पास तो आपको देने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है। ज्योति उसके भोलेपन पर मुस्कुराती हुई बोली, आशा जी मैं आपके यहाँ फीस मांगने नहीं आई हूँ। सम्यक मेरा कॉलेज का दोस्त रहा है तो उसका केस मैं मुफ्त में लड़ रही हूँ। यहाँ तो मैं आपसे सम्यक के बारे में कुछ जानने आई हूँ। हाँ पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? मानो राहत की सांस लेती आशा बोली। कॉलेज में सम्यक एक हंसमुख और मस्त लड़का था, वो ऐसा शराबी कैसे बन गया?
मेरी फूटी किस्मत से बन गया और क्या। शादी के बाद कुछ समय उसका चाल चलन और बर्ताव अच्छा रहा, फिर उसने रंग दिखाने शुरू कर दिए।
ईशा के जन्म के बाद और जिम्मेदारी दिखाना तो दूर, एक नंबर का अय्याश और शराबी बन गया। हार कर मुझे तलाक का नोटिस देना पड़ा, पर वो इसके लिए भी राजी नहीं था। मैं ईशा पर ऐसे नाकारा इंसान की छाया भी नहीं पड़ने देना चाहती थी, तो उसका घर छोड़कर यहां रहने चली आई। अब खुद ही देखो कि वो तुच्छा इंसान कत्ल करके कहां पहुंचा है।
ज्योति ने सहमति में सिर हिलाया। एक गैर जिम्मेदार इंसान के घर परिवार की क्या अवस्था होती है, ये वो खुद अपनी आंखों से देख रही थी। कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे। एक कार्डबोर्ड के बड़े से बक्से में ढेर सारे मैले कपड़े ठूंस कर ड्रॉइंग रूम में ही रखे हुए थे। लगता था आशा को भी घर की साफ सफाई से कोई खास लगाव नहीं था।
मैडम, आपका घर खर्च कैसे चलता है? आप कोई काम तो नहीं करती है ना?
ज्योति ने पूछा। आशा बोली,
अपनी बेटी ईशा के नाम पर हर महीने 15,000 सम्यक दे जाता है, इसमें कोताही नहीं करता, पर अब क्या होगा, अब तो भूखों मरना पड़ेगा,
कहकर आशा सुबकने लगी। ज्योति ने उसे ढाढ़स बंधाया और बोली,
सच में मुसीबत तो बहुत बड़ी है, पर एक अच्छी बात है कि सम्यक ने अपना घर बचा रखा है, जो अगर भगवान ना करे उसे कुछ हो जाए तो आपके काम आ सकता है। उसके किराए के रूप में आपको कुछ पैसे मिलते रहेंगे।
आशा ने सहमति में सिर हिलाया और बोली,
हाँ ये बात मुझे मेरे वकील ने बताई है कि अभी हमारा तलाक नहीं हुआ है और मैं उसकी कानूनी पत्नी होने के कारण उस मकान की अधिकारी हूँ।
इतने में अंदर कपड़े धोने की मशीन टी टी की आवाज़ करने लगी तो आशा उछल कर खड़ी होती हुई बोली,
अब लगता है कपड़े धुल गए।
ज्योति भी नमस्ते करके बाहर निकल आई। रिमांड के 10 दिन बीत जाने पर सम्यक बाबलानी को कोर्ट में पेश किया गया। सब इंस्पेक्टर राम बच्चन वहां मौजूद था। सरकारी वकील प्रीतम अरोड़ा ने सारे सबूत पेश किए। फिर सब इंस्पेक्टर राम बच्चन की गवाही हुई, जिसने सबसे पहले मौका वारदात का मुआयना और पंचनामा किया था। फिर कांता और सोनू सिंह की गवाही हुई, जिन्होंने कबूला कि जिस रात मंगतानी की हत्या हुई उसी दिन सुबह सम्यक ने उसे मार डालने की धमकी देते हुए उसके साथ हाथापाई की थी। और सबसे बढ़कर मुजरिम का इकबालिया बयान,
सारा केस दिन के उजाले की तरह साफ है मिलॉर्ड,
प्रीतम अरोड़ा गरज कर बोला।
मेरे ख्याल से मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा देने में अब कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए।
जज गाय तोंडे के चेहरे पर भी आश्वस्ति के भाव थे, पर नियम कानून के अनुसार हर मुजरिम को बचाव का हक होता है और ज्योति शुक्ला अपना वकालतनामा कोर्ट में दाखिल कर चुकी थी, तो जज की प्रश्नवाचक दृष्टि उसकी ओर उठी। ज्योति शुक्ला अपनी जगह पर खड़ी हुई और बोलना शुरू किया, मिलॉर्ड, एक नज़र से देखने पर मुजरिम सम्यक बाबलानी खूनी लगता है। पुलिस ने हर तरह से सीलबंद केस प्रस्तुत किया है, पर आप भी जानते हैं मिलॉर्ड कि हमारी पुलिस की कार्य पद्धति क्या है। ये लोग सबूत खोजकर कातिल नहीं तलाशते, बल्कि कातिल छांटकर उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करते हैं या गढ़ भी लेते हैं।
ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड,
सरकारी वकील गर्जा,
मेरी काबिल दोस्त हमारी कानून व्यवस्था पर तंज कस रही हैं, जो बेबुनियाद है।
जज ने सहमति में सर हिलाया और बोले,
ज्योति तुम मुकदमे से संबंधित बात ही करो, कानून और न्याय व्यवस्था पर अपनी एक्सपर्ट राय मत दो।
आई एम सॉरी मिलॉर्ड, मैं आइंदा ध्यान रखूंगी,
ज्योति ने स्वीकार किया। फिर आगे बोली, हाँ तो मैं ये कह रही थी कि अभियोजन पक्ष ने सम्यक का इकबालिया बयान मिलते ही कई महत्वपूर्ण बातों को नज़रअंदाज कर दिया है। मसलन, सम्यक ने अपने बयान में 1,00,000 रुपये का जिक्र किया था जो मंगतानी ने उसे ऑफर किए थे। वो रुपये कहाँ गए?
वो रुपए सम्यक साथ ले गया होगा,
प्रीतम अरोड़ा चिल्लाया।
सम्यक ने अपने बयान में साफ कहा है
कि सिर पर ऐश्वर्य पटकते ही वो भाग खड़ा हुआ था और रुपए का कोई जिक्र नहीं किया, तो साफ है कि रुपए उसने नहीं लिए हैं, क्योंकि ये उचित नहीं लगता कि कोई व्यक्ति खुद से पुलिस स्टेशन में आकर हत्या का आरोप स्वीकार कर ले और 1,00,000 रुपयों की चोरी की बात छुपाए रखे। ज्योति भी जोरदार आवाज में चिल्लाई। जज ने कटघरे में खड़े सम्यक से पूछा,
क्या तुमने ऐश्वर्य पटकने के बाद रुपए लिए थे?
सम्यक ने नामे सर हिलाया तो जज भड़के,
मुंह से उत्तर दो।
नहीं लिए थे सर,
हड़बड़ाकर सम्यक ने कहा। यू मे प्रोसीड ज्योति। जज साहब अब ज्योति से मुखातिब थे। ज्योति ने आगे उत्साहपूर्वक बोलना शुरू किया, मिलॉर्ड, पैसों की बात अगर छोड़ भी दें तो एक बहुत बड़ी बात अभियोजन पक्ष की नजर से चूक गई है जो इस केस को पलट कर रख देगी। जज ने आश्चर्य से पूछा,
वॉट इज दैट?
सरकारी वकील भी मुंह बाए सुनने की मुद्रा में था। ज्योति बोली, मिलॉर्ड, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बता रही है कि एश्ट्रे के एक ही जोरदार वार से मकतूल की खोपड़ी फट गई और उसका देहांत हो गया, पर ध्यान से देखें तो रिपोर्ट में एक और गूमड़ का जिक्र है जो सर पर बना हुआ है। उस बारे में अभियोजन पक्ष क्यों खामोश है?
एक्सक्यूज मी मिलॉर्ड,
प्रीतम बोला,
क्या पता बचाओ पक्ष की वकील क्या साबित करना चाहती हैं? उस नामालूम गूमड़ से इस हत्या का क्या लेना देना? हो सकता है सम्यक ने दो वार किए हो, आगे पीछे।
मी लॉर्ड,
उसी गूमड़ पर मेरे क्लाइंट की बेगुनाही टिकी है, ज्योति चिल्लाकर बोली।
तो आप कैसे बेगुनाही साबित करेंगी?
जज भी उत्सुक हो उठे। मी लॉर्ड, आप खुद सोचिए, जब एक ही वार में मकतूल की खोपड़ी फट गई और वो मर गया तो दूसरा कदरन हल्का वार क्यों किया गया? अगर मरने पर कंफ्यूजन होता तो दूसरा वार और शक्तिशाली या कम से कम इसी वेग से किया जाता, ना कि हल्का फुल्का।
ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मेरी काबिल दोस्त अदालत को उलझा रही हैं। हो सकता है पहला वार हल्का किया गया हो और दूसरा जोर से मारा हो,
प्रीतम हड़बड़ा कर बोला।
मिलॉर्ड,
ये तो और भी संभव नहीं लगता। मुलजिम ने अपने बयान में कहा है कि वक्ती जुनून के वशीभूत होकर उसने जोरदार प्रहार किया और भाग खड़ा हुआ, तो वो पहला हल्का प्रहार करके मंगतानी को सचेत होने और प्रतिवाद करने का मौका क्यों देगा भला?
जज बोले, आप ये तो मानती हैं ना कि सम्यक ने मंगतानी की खोपड़ी पर जोरदार प्रहार किया, तो क्या संशय रह जाता है?
मी लॉर्ड, एक नजर मेरे क्लाइंट की अवस्था पर डालिए। इसने पिछले 12 दिन से शराब की एक बूंद नहीं पी है, जबकि मेडिकल रिपोर्ट इसके अल्कोहलिक होने की पुष्टि कर चुकी हैं। फिर भी ये कटघरे में ही झूमता सा महसूस हो रहा है। दूसरे, इसकी शारीरिक कदकाठी पर भी गौर करते हुए सोचिए कि मंगतानी के ऑफिस में ये कहां से उठकर पहुंचा था? रौनक बार से, जहां ये तब तक पता नहीं कितनी विस्की गटक चुका था। अपनी कमजोर शारीरिक हालत और शराब के जोरदार नशे की हालत में इसने कितना जोरदार वार किया होगा, आप खुद सोच सकते हैं।
आप कहना क्या चाहती हैं, साफ साफ कहिए।
जज साहब बोले, अब वे ज्योति के तर्कों से खासे प्रभावित लग रहे थे। मी लॉर्ड, मेरा कहना यह है कि सम्यक के बयान के अनुसार सारी बातें हुई होंगी। जुनून में आकर सम्यक ने ऐश्ट्रे उठाकर जोर से मंगतानी के सर पर पटकी होगी, पर इससे उतना ही जोर लगा होगा जिसके कारण उसके सर पर गूमड़ बन गया होगा। ये मंगतानी के कुर्सी पर गिरते ही भाग खड़ा हुआ, पर इसे ये पता नहीं चला कि इसके जाते ही मंगतानी होश में आ गया होगा।
आप भूल रही हैं मैडम, मंगतानी मर चुका है,
प्रीतम जोर से बोला।
अगर आपकी थ्योरी सही होती तो मंगतानी मरा ही ना होता, लेकिन मंगतानी मरा है तो किसी ने मारा ही होगा, और वहां इन दोनों के अलावा कौन था?
यही बात मैं कहना चाहती हूं मिलॉर्ड, वहां इन दोनों के अलावा भी कोई था जिसके बारे में सम्यक और मंगतानी नहीं जानते थे। उसने छुपे रहकर यह सब मामला देखा। जब सम्यक मंगतानी पर वार करके फरार हुआ और मंगतानी को कुछ खास चोट नहीं पहुंची, तो असली कातिल हरकत में आया। उसने दबे पांव आकर वही ऐश्रे मंगतानी की खोपड़ी पर इतने जोर से पटकी कि उसका दम निकल गया। फिर कातिल वहां पड़े लाख रुपए लेकर रवाना हो गया। अगले दिन मीडिया के माध्यम से खबर मिलने पर सम्यक ने सोचा कि उसके ही वार से मंगतानी मरा है और उसने पुलिस में आत्मसमर्पण कर दिया। और पुलिस ने भी प्लेट में सजा हुआ कातिल मिलते ही आगे तफ्तीश बंद कर दी, अन्यथा आलाय कत्ल पर बाकी की उंगलियों के निशान भी मिलाए जाते तो हो सकता है असली कातिल की उंगलियों की छाप भी मिल जाती। जज ने आग उगलती नजर से सब इंस्पेक्टर को देखा तो वो हड़बड़ा गया। जज ने इस एंगल से जांच करने का आदेश देकर 8 दिन बाद नई तारीख मुकर्रर कर दी, पर सम्यक को बेल पर रिहा करने की ज्योति की मांग खारिज कर दी। पर ज्योति खुश थी कि उसने अभियोजन के सुदृढ़ किले में एक सेंध तो लगा ही दी थी। अगले 8 दिनों में पुलिस ने ज्योति द्वारा सुझाए गए एंगल पर काम किया। एश्रे पर से उठाए गए सभी निशानों का ऑफिस में आने जाने वाले संभावित लोगों के निशान लेकर मिलान किया गया। उस पर चंद्राबाई के निशान मिले, कांता, सोनू और चौधरी के फिंगरप्रिंट्स उस ट्रे पर नहीं थे, पर एक अनजान व्यक्ति की उंगली का निशान उस पर पाया गया। उस निशान के बारे में ये मान लिया गया कि मंगतानी के किसी क्लाइंट ने बेध्यानी से ट्रे को छुआ होगा। हत्या की रात तीसरे व्यक्ति की मौजूदगी का कोई सबूत पुलिस को नहीं मिला। दिन बीतते रहे। ज्योति पिछले 2 दिनों से एक शख्स का पीछा कर रही थी। जैसे जैसे उसकी जांच आगे बढ़ रही थी, उसका शक बढ़ता चला जा रहा था। ये एक मझले कद की महिला थी, जिसे ये पता नहीं था कि कोई उसके क्रियाकलाप पर नजर रखे हुए है। ज्योति एक दिन एक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक आइटम की शॉप में गई, जहां से उस महिला ने कुछ खरीदी की थी। ज्योति ने उस शॉप के मैनेजर से मुलाकात की और संदेहास्पद महिला के बारे में पूछा। मैनेजर ने बताया कि उस महिला ने सामान खरीदकर कैश में पेमेंट किया है। कैश का कोई रिकॉर्ड तो रहता नहीं है, सिर्फ कैश मेमो की डुप्लीकेट प्रति थी। लेकिन तब ज्योति के सुखद आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब कैशियर ने बताया कि उसने महिला द्वारा 1000 के नए नोटों में किए गए पेमेंट्स का सीरियल नंबर सावधानीवश लिख लिया था। ज्योति ने तुरंत उस रिकॉर्ड की जेरोक्स कॉपी करवा कर ले ली। एक बार ज्योति उस महिला का पीछा करते हुए एक मॉल में पहुंची। ज्योति उसे तलाश कर ही रही थी, तब तक उसके कंधे पर एक हाथ पड़ा। ज्योति किसी और ही ध्यान में थी। जैसे ही चौंक कर घूमी तो कांता को देखकर सकपका गई। कांता ने पूछा, और कैसी हो ज्योति मैडम, किसी को ढूंढ रही हो क्या? नहीं, मैं तो कुछ शॉपिंग करने आई थी, अब तो निकल रही हूँ, कहकर जल्दी से ज्योति वहां से चली गई। कुछ दूर जाकर उसने मुड़कर देखा तो कांता बहुत विचित्र मुद्रा बनाए उसे घूर रही थी। नियत तारीख पर कोर्ट रूम लोगों से खचाखच भरा हुआ था। ज्योति शुक्ला और प्रीतम अरोड़ा अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए थे। सब इंस्पेक्टर राम बच्चन और इंस्पेक्टर अमर सिंह दोनों मौजूद थे। दर्शक दीर्घा में चौधरी, सोनू सिंह, कांता, आशा, उसकी बेटी ईशा, गायत्री, चंद्राबाई और काफी दूसरे लोग भी मौजूद थे। समय होते ही जज साहब का आगमन हुआ। सबने खड़े होकर उनका सम्मान किया, फिर गायतोंडे साहब के बैठने पर सब अपने स्थान पर बैठ गए और कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई। सम्यक बाबलानी कटघरे में खड़ा व्याकुल भाव से इधर उधर देख रहा था। रह रहकर उसकी दृष्टि अपनी बेटी ईशा पर टिक जाती। आज फैसले का दिन था। सरकारी वकील प्रीतम अरोड़ा ने पुरजोर तरीके से एक बार फिर ज्योति शुक्ला द्वारा पिछली तारीख पर फंसाए गए फच्चर की बखिया उधेड़ना शुरू की। मिलोर्ड, मेरी काबिल दोस्त ने एक कहानी गढ़कर कोर्ट को कुछ समय के लिए गुमराह जरूर किया, लेकिन सच परेशान हो सकता है, हार नहीं सकता। इनके बताए रास्ते पर चलकर भी पुलिस ने सारी जांच कर ली है, पर परिणाम ढाक के 3 पाथ ही रहा। एश्रे पर केवल काम वाली बाई की उंगलियों के निशान मिले, जो सहज ही हैं। तो मेरी अदालत से गुजारिश है कि इस मामले में जल्दी से जल्दी मुजरिम को सख्त सजा दें। अब ज्योति शुक्ला खड़ी होकर बोली, मीलॉर्ड, हिंदुस्तान का संविधान कहता है कि चाहे लाख मुजरिम छूट जाएं, लेकिन किसी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। मैंने पिछली तारीख पर जो बातें कही थी वो 100% सच है, केवल उन्हें सिद्ध करना बाकी है। इतने में कोर्ट रूम में जोर से किसी का मोबाइल बज उठा।
जज साहब की त्योरियां चढ़ गईं। उन्होंने हथौड़ा उठाकर टेबल पर पटका और डांटते हुए बोले, कोर्ट रूम में सभी अपने अपने मोबाइल साइलेंट पर रखें। ये गार्डन नहीं है जहां आप लोग तफरीह करने आए हैं।
कांता का नया सैमसंग गैलेक्सी नोट जोरों से बज रहा था तो उसने खिसियाकर उसे साइलेंट किया और सर झुकाकर बैठ गई। जज साहब संतुष्ट होकर बोले,
जिरह जारी रखिए। मैडम जी, कोर्ट हवाई बातों के आधार पर नहीं सबूतों के आधार पर चलता है।
प्रीतम बोला, मी लॉर्ड, मेरी थ्योरी पूरी तरह सच है और हर बात का सबूत मेरे पास है।
अच्छा, तो आज आप सिद्ध करेंगी कि सम्यक कातिल नहीं है।
गायतोंडे के मुंह से निकला, जी मे लॉर्ड। न केवल इतना बल्कि आज मैं इस कोर्ट में असली कातिल को भी बेनकाब कर दूंगी। ये सुनकर आश्चर्य से सब एक दूसरे को देखने लगे। क्या वाकई ज्योति असली कातिल को सामने लेकर आ पाई? कांता का इस कत्ल से क्या संबंध है? ज्योति को कांता पर क्यों शक है? इन सारे सवालों के जवाब के लिए सुनिए कत्ल का राज का अगला भाग सिर्फ गाथा पर।